podcast is supported by The RealReal. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 38 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 site credit when you sell for the first time. Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
गाजा के स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मेडिकल सप्लाई और ईंधन में कमी के कारण समूचे एनक्लेव का अस्पताल नेटवर्क ठप्प होने के कगार पर है। दक्षिणी गाजा में केवल एक अस्पताल रेडक्रॉस फील्ड अस्पताल ही ढंग से काम कर पा रहा है। वहां के चिकित्सकों का कहना है कि 60 बिस्तरों वाला यह अस्पताल अपनी क्षमता से कहीं अधिक काम कर रहा है। वहां काम कर रहे चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों में एक ऑस्ट्रेलियाई नर्स भी हैं, जो दक्षिण सूडान से लेकर सीरिया तक के संघर्षग्रस्त इलाकों में एक दशक से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं और गाजा में अपने चौथे मिशन पर हैं। वह अपने दैनिक अनुभवों को दस्तावेज के रूप में सहेज रहे हैं। उन्होंने SBS से अपने अनुभव साझा करते हुए कहा,
So I'm here at the Red Cross Field Hospital in Rafah and I'm in our resuscitation area.
पिछले 5 हफ्तों से ऑस्ट्रेलियाई नर्स जीन फिलिप मिलर दक्षिणी गाजा में काम कर रहे हैं।
We've got our blood now, so we can transfuse our patient. She's the young lady who's suffered a gunshot wound to her flank. She had damage to her spleen. She had damage to her lung, collapsed and blood in there. So we've actually had to put a chest drain in and drain out some of that blood. She remains with a high respiratory rate and a high heart rate. But we'll give her this blood now and hopefully that will help stabilize her.
मूल रूप से मेलबर्न के रहने वाले आपातकालीन नर्स जीन फिलिप ने पिछले एक दशक में रेडक्रॉस के साथ दक्षिण सूडान, म्यांमार, बांग्लादेश और सीरिया में काम किया है। गाजा में वह चौथी बार तैनात किए गए हैं।
The hardest thing, the most distressing thing is seeing children who are injured. We've had children with gunshot wounds, with shrapnel injuries, with blast injuries, children who have lost their parents. They're calling out for their dead parents in a hospital, and you see how traumatized they are. This is a hospital project in an active conflict zone where a weapon wounded hospital. We're seeing significant injuries here. Yeah, I mean it's confronting work.
राफा में रेड क्रॉस फील्ड अस्पताल पिछले साल खुला था। वहां इसे अस्थायी रूप में बनाया गया था, लेकिन अब यह गाजा में पूरी तरह से काम कर रहे आखिरी अस्पतालों में से एक है।
It is a hospital made of tents. We have 7 wards. We have up to 100 patients. We were 110 when I first arrived. It's kind of a pre-packaged hospital that is normally designed to only operate for several months.
यह अस्पताल गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के सहायता केंद्र से 2 किलोमीटर दूर है और मई में इसके खुलने के बाद से रेडक्रॉस अस्पताल में बड़ी संख्या में घायलों का इलाज किया जा रहा है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चिकित्सकों का कहना है कि आने वाले 1/3 से ज्यादा मरीज 18 साल से कम उम्र के हैं और उनमें से लगभग आधी महिलाएं हैं। जीन फिलिप का कहना है कि करीब 30 से 50 मरीज सामूहिक रूप से घायल होकर भर्ती होते हैं, लेकिन उनके सहयोगियों ने पिछले कुछ महीनों में इससे भी ज्यादा सामूहिक रूप से हताहत लोगों की संख्या देखी है।
The largest one was around 245 casualties arriving within a few hours. So it's near impossible to comprehend the chaos and the difficulty that would be to treat all those patients. Overall, as a whole, that the hospital has treated over 4,500 weapon-wounded individuals and logged 300 deaths of people that have been trying to access food.
अस्पताल में खून की कमी को पूरा करने के लिए मरीजों के रिश्तेदारों से रक्तदान लिया जाता है। गाजा के किसी भी अन्य चिकित्सा केंद्र की तरह यह अस्पताल भी सीमित आपूर्ति के साथ चल रहा है। जीन फिलिप बताते हैं कि रेड क्रॉस प्राथमिक उपचारकर्ताओं के लिए कलर कोडेड किट प्रदान करता है।
For acute patients, green for the walking wounded, black for patients that have arrived deceased, and then you've got blue for those patients that have suffered unsurvivable injuries, and then it's more of a matter of trying to make them comfortable and allowing them to die with dignity.
उत्तर में गाजा शहर में इजराइल के सैन्य हमले के कारण हजारों फिलिस्तीनी दक्षिण की ओर पलायन कर रहे हैं।
There's a lot of desperation. There's people who are trying to find places to evacuate to, and they're unable to. There's people, we've got staff members who they can't evacuate their families because they've got elderly parents. There's also costs involved with evacuations that people can't afford. No doubt there are kind of more tents springing up around us in the south.
लोगों को वहां से निकालने की चुनौती बढ़ती जा रही है और भोजन उपलब्ध कराना भी मुश्किल हो गया है।
Unfortunately, we are seeing more and more patients arrive to the hospital with signs of malnourishment, and this is really worrying for us because we know that it delays recovery and we know that it increases the risk of complications for these patients.
जीन फिलिप का कहना है कि कुपोषण को मापने के लिए मरीजों की ऊपरी बांह की परिधि मापी जाती है।
The challenges here in Gaza really comes down to food scarcity, to high market prices, and to the lack of availability of nutritional supplementation.
अस्पताल में लोगों को खाना भी मुहैया कराया जाता है।
Patients and staff are getting their meals. This is what we have, a huge portion of rice, so patients and staff can come and collect it. And this is kindly donated to us from the World Central Kitchen.
इसके साथ ही उन्हें आसपास के युद्ध वाले इलाकों में खतरों से आगाह भी किया जाता है।
That's our bell for the safe room. So we're gonna lie flat and wait it out. There was just some shooting nearby, so.
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अक्टूबर 2023 के बाद से गाजा में 500 से ज्यादा सहायता कर्मी मारे गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई रेड क्रॉस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंड्रू कॉल्विन का कहना है कि इनमें 67 रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट के कर्मचारी हैं।
That's 67 deaths that didn't need to happen. That's 67 lives of volunteers who were putting themselves in the face of danger to help others. These people are not dispensable. We can't just look at this as a cost of conflict.
रोजमर्रा के आघात के बावजूद जीन फिलिप का कहना है कि यह हमें सहनशीलता और संकल्प की याद दिलाता है। यहाँ गंभीर रूप से घायल एक पिता अपने नवजात बेटे से मिलने आते हैं।
Overnight, something quite miraculous has happened. His pregnant wife gave birth to a baby boy just 20 meters away in our maternity department. It's a moment that despite all the pain and suffering we do see here in Gaza, there are some moments of hope and joy.
यहाँ एक स्थानीय बढ़ई मोहम्मद हैं जो बच्चों के लिए खिलौने और घायलों के लिए बैसाखियाँ बनाते हैं।
At peak times, he's been making about 16 pairs of these crutches per week. These are incredibly important in order to get our patients rehabilitated and back up on their feet.
गाजा में अपने बिताए समय को याद करते हुए जीन फिलिप कहते हैं कि वे चाहते हैं कि लोग इस संघर्ष के मानवीय पहलू को भी देखें।
I think it's very easy for us to kind of get lost in the numbers. Really, the people here are ordinary people in extremely, extraordinarily difficult circumstances. And these are people that had hopes and dreams, and they had jobs and they had families, and these people have lost everything. Like they've lost their homes, they've lost their loved ones. Every day at the hospital, I hear about a colleague that's lost someone, and they're all being displaced. They're living in tents. They don't have electricity. It's a daily challenge of just trying to get fresh water or food or maintain hygiene. It's a nightmare for them. What their dream is a life without war, safety for their children, to live with dignity, to live normal lives.
SBS न्यूज से अलेक्जेंड्रा जोन्स के इस रिपोर्ट को SBS हिंदी के लिए प्रस्तुत किया शशि कुमार ने। इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में हुए हमलों के बाद से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के गाजा में स्वतंत्र रूप से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसराइल ने बार बार इन आरोपों का खंडन किया है कि वह जानबूझकर सहायता कर्मियों को निशाना बना रहा है।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।